ओम शांति। टॉपिक तो हम सब ने सुन लिया है, तो आज की जो संडे की जो मुरली चलने वाली है उसमें बाबा ने हम सबको ओम शांति। तो हमें जो टॉपिक मिला था उसके 10 पॉइंट निकाल के लाने के लिए, तो उसमें हमने देखा है कि जो व्यक्ति बाबा को अपना शिक्षक न बना करके समय को टीचर बनाता है, समय को शिक्षक बनाता है, तो उसके जीवन में जैसे कि कोई लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है, कोई फिगर स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि बाप को शिक्षक बनाने वाला संपूर्ण लक्ष्य के साथ ही वो आगे बढ़ता है। अगर बाबा को शिक्षक नहीं बनाया, समय को उसने टीचर बनाया, तो वो इस प्रकार की बातों से दूर रहता है और वो स्पष्ट रूप से अपने लक्ष्य से भटक जाता है, उद्देश्य से भटक जाता है। इसीलिए आगे जाकर के ये मार्जिन उसको नहीं मिलेगा कि मुझे अपने लक्ष्य में टिकना है, लक्ष्य में स्थित होना है, वो इस बातों से दूर हो जाता है। इसीलिए हमें सबसे पहले लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए, फिगर क्लियर होनी चाहिए, भविष्य का जो बाबा ने हमें MN ऑब्जेक्ट दिया है वो हमारे दिल दिमाग में मन मस्तिष्क में सदा ही गड़ा हुआ होनी चाहिए, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं और बाबा का इसमें नाम पाला कर सकते हैं। जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण जीवन में आते हैं। इसीलिए हमारा जो बाबा ने सबसे पहले शिव बाबा ने भी वर्मा बाप को लक्ष्य स्पष्ट कराया कि आगे जाके तुम ऐसा बनोगे, तो उसी अनुसार से अपने आप को बाबा ने ढालते उस मार्ग पर चल के अपने को संपूर्ण र संपन्न बनाए। इसीलिए दूसरी बातें हमने निकाले थे, समय से पहले ही सब कुछ करना पड़ेगा, तो समय को किसी ने माध्यम बनाए, समय में हो जाएगा, समय में कर लेंगे, समय आने पर युग किया जा सकता है, इस प्रकार के दिलासे और भरोसे से कोई चलता है तो समय आने पर व्यक्ति धोखा खा जाता है, धोखे में आ जाता है, अभी से वो धोखे में है और आगे भी वो धोखा खाता ही रहेगा। इसीलिए समय से पहले ही हम अगर करते हैं तो इसका फायदा हमको मिलेगा, और समय गुजरने के बाद में समय के आधार से जो कोई चलता है तो उसमें उसको धोखा मिलना सुनिश्चित है। इसीलिए समय को शिक्षक न बना करके बाप ने दिए गए आज्ञा श्रीमत को अगर हम फॉलो करते हैं तो समय से पहले हम तैयार हो जाते हैं। इसीलिए हमें इस प्रकार के धोखे में नहीं रहना है कि बाद में हम कर लेंगे, बाद में गैलप कर लेंगे, आगे निकल जाएंगे। इस प्रकार के धोखे में अगर है तो माया ने उसको धोखा दे चुकी है, तो आगे भी धोखा खाते ही रहेगा और प्राप्तियों से वंचित हो जाएगा। इसीलिए पश्चाताप की जो मार्जिन जीवन में आ जाएगी और पश्चाताप मन में सदा ही बना रहेगा कि जो हमने समय पर कर नहीं पाए, तो इस प्रकार के घटिया संकल्प, जो दुखदायी संकल्प, माया के संकल्प, धोखा देने वाले संकल्प हमारे मन में अगर आते हैं तो अभी से हमने फौरन चेक कर लेना चाहिए कि मैंने बाप को शिक्षक नहीं बनाया, ये माया मुझे समय को आगे रख करके मुझे है ना ऐसी नींद में सुलाने का काम कर रही है, तो इसीलिए हमें इस बात के ऊपर भी पूरा अटेंशन देने चाहिए। आगे जाकर के बाबा ने बोला है कि बाप टीचर अभी शिक्षक है बाबा, तो आगे जाकर के बाबा भी साक्षी हो जाएगा, तो उस समय हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। जैसे स्कूल में भी जो पढ़ाते हैं तो बड़े एग्जाम का जो टाइम होता है शिक्षक भी उस समय साक्षी हो जाता है, उससे हमें किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता है। अगर हमने कहीं चीटिंग करते हुए अगर उसने देख लिया तो हमारे पेपर में वो सिग्नेचर कर देगा, तो हमें उस प्रकार की बातों से पीछे होना पड़ेगा। इसीलिए समय को शिक्षक बनाने वाले और भगवान को जो शिक्षक न बनाने वाले आगे जाकर के इसी धोखे में रह जाएंगे कि बाबा साक्षी हो जाएगा और जो जितना किया है उसमें ठप्पा लग जाएगी और हम अपने को पश्चाताप की अग्नि में जलाने के अलावा अपने को कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें इस बात के ऊपर भी संपूर्ण रूप से अभी से ही ये बातें करनी होगी। उस समय हमें अगर पहले से किया हुआ होता तो बाप जैसे साक्षी हो जाते तो हम भी साक्षी बन जाते, लेकिन उस समय फिर करने का मन होता है लेकिन उस समय कुछ नहीं उतरता है। समय, शक्ति, संकल्प, एनर्जी हमारी नष्ट हो जाएगी और हम पश्चाताप के अग्नि में जलते रहेंगे। इसीलिए हमने 5 नंबर में निकाले थे कि एक तरफ होगा जय जयकार, दूसरी तरफ होगा हाहाकार, क्योंकि जिसने समय को शिक्षक बनाया वो हाहाकार में होगा उस समय, और जिसने बाप को टीचर बनाए वो जय जयकार में होंगे। एक तरफ पश्चाताप की घड़ियां होगी, एक तरफ प्रत्यक्षता की घड़ी होगी, और जिसने जितना किया वो स्पष्ट दिखाई देगा। और जो चीज हमारे जीवन में जिस भी तरीके से भगवान को शिक्षक न बनाकर आलस्य, अलबेले, सुस्ती में आकर के इस बातों के ऊपर हमने ज्यादा फोकस नहीं दे सके तो पश्चाताप की अग्नि में हमें जलना पड़ेगा, क्योंकि हमें उस समय किसी का भी सहयोग नहीं मिलेगा। अभी हमें सब प्रकार के सहयोग मिल रहे हैं, उस समय भी हमने अलबेले में आकर के समय को आगे रखा, बाप को आगे नहीं रख सके, तो इस प्रकार से हमें इस प्रकार के धोखे में आने का 100% चांस है। तो छठे में हम 6 नंबर में हमने निकाले थे सर्व प्राप्तियों से हम, एक तो सर्व प्राप्तियों से हम वंचित हो जाएंगे अगर समय को टीचर बनाए और भगवान को टीचर बनाए तो सर्व प्राप्तियों से युक्त हो जाएंगे, क्योंकि सर्व प्राप्तियों का समय है। अभी सभी प्रकार की जो प्राप्तियां हैं, जो ज्ञान, ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की, समय, संकल्प, श्वास, ये सभी प्रकार की भरपूर फायदा लेने का समय है। अगर सर्व प्राप्तियों से अभी हम भरपूर नहीं हुए तो उस समय हमें लगेगा कि हम खाली रह गए, खालीपन के चपेट में हम आ जाएंगे, क्योंकि खालीपन जीवन को बहुत दुखी कर देता है। इसलिए उस समय स्पिरिचुअल डिप्रेशन बढ़ेगी ब्राह्मण संसार में, क्योंकि उस समय हमको सब कुछ पता होते हुए हमने नहीं कर पाए। दुनिया के लोगों को तो पता है कि जो होगा दुनिया में देखा जाएगा, और अभी वो KPM ग्रुप में खाओ पियो मौज करो तो उनके लिए उतना ज्यादा पश्चाताप KPM लेकिन उस समय ये बातें नहीं होगी, उस समय सारी बातें भूल जाएगा, तो बस जो न किया हुआ बातें ही सबसे आगे आ जाएगी। और उस समय न ड्रामा याद आएगी, न जिसको देख करके हमने स्थिति और अवस्था बिगाड़े थे वो तो कहाँ गायब हो जाएंगे और हम अकेले रह जाएंगे। तो इसीलिए हमें इस बात को भी संपूर्ण रूप से फोकस देनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान दयालु है। 7 नंबर में हमने निकाले थे भगवान दयालु है, कृपालु है, और रहमदिल है, और हमारे आंतरिक कमी कमजोरियों को देख करके, हमारे नबज को देख करके वो अपनी सारी शक्तियां आज हमें लुटा रहे हैं। किसकी क्या खूबी है, किसकी क्या खासियत है, ये कितना कर पाता है, ये इससे कितना हो पाता है उसको पता है, इसी हिसाब से हमें अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन उस समय होलसेल का समय होगा, समय किसी को रहम, दया, कृपा नहीं करने वाला है, उस समय रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए अभी से हमें ये चेक करना होगा कि समय को शिक्षक बना रहा हूँ या तो बाप को शिक्षक बनाया, ये अभी से हमें चेक करते रहना चाहिए। और हमने 8वां में निकाले थे कि उस समय हमें सो स्वरूप से वंचित हो जाएंगे हम। सो स्वरूप अतः कई सारी बातें इसमें आती है, सो देश, सो धर्म, सो कर्तव्य, सो संस्कार, इस सभी बातों को भरने का और अनुभव करने का समय चल रहा है अभी। अगर इस सब बातें अगर हमने नहीं किया, सो स्वरूप का अनुभव नहीं किया, आत्मा स्वरूप की अनुभूति नहीं की और परब्रह्म का अनुभव नहीं कर सके, तो समय को टीचर बनाने वाले इस सभी बातों से वंचित हो जाएंगे और इस सभी बातें उसके जीवन के लिए सदा ही कमी कमजोरी बन करके रह जाएगी। और समय से पहले जो अल्टीमेटम का समय होता है उस समय के अंदर अंदर किया जाता है तो सबका सपोर्ट मिलता है, और उस समय निकलने के बाद में हम अगर करने चल पड़े तो समय शक्ति एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेंगे और प्राप्तियों से हम बहुत कम प्राप्ति हाथ में आएगी, इसलिए इस बात के ऊपर भी हमें पूरा फोकस देना होगा। तो 9 नंबर में हमने निकाले थे, जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं होता है, जो काम की चीजें रह जाती है और जो बेकाम की चीजें वो पकड़ में आता है, और इसीलिए जल्दीबाजी में कोई भी काम नहीं होता है। हमने देखा है कि ये मार्ग में कि जो भी समय जो चीज जिस समय के लिए जितना मुकर्रर किया गया है उस समय ही उस चीज को करना होता है, क्योंकि रातों रात महारथी नहीं बने जाते हैं, क्योंकि इसके लिए पहले से अगर इंतजाम अगर नहीं होगा, पहले से प्राप्तियों का अनुभव हमने नहीं किया है, तो उस समय हमें दुखी होना पड़ेगा। तो 10 नंबर में हमने निकाले थे, एक तरफ वाह वाह मेरा भाग्य, दूसरी तरफ हाय मेरा किस्मत। 10 नंबर में ये निकाला कि जिन्होंने प्राप्तियों से भरपूर किया तो वह अपना भाग्य को, अपनी किस्मत को, अपने ड्रामा को, बाबा को, ब्राह्मण परिवार को, संगमी को थैंक्स देते रहेंगे, और जिन्होंने नहीं किया तो उस समय हुआ यह मेरा भाग्य ऐसा ही था, अब रोने के अलावा। इसलिए चिड़िया चुक गई खेत है ना, उस समय हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो ये अभी से हमें हर पल हर घड़ी बाबा से सर्व संबंधों से अपने को अपना बना के रखेंगे, और ये जो बेकार के संकल्प घटिया संकल्प मन में आते हैं उस समय फौरन चेक करना चाहिए कि किस बातों के ऊपर मेरा संकल्प आ रहा है। तो भगवान को मैंने अपना बनाया अथवा समय को आगे रखा, समय को आगे रखने वाले देखते रह जाएंगे और भगवान को याद करने वाले माला माल हो जाएंगे। इसीलिए अपने भाग्य को कोसना नहीं पड़ेगा, इसीलिए इस बातों के ऊपर हमें देखना होगा कि समय अगर हमने आगे रखा, हमें योग करना करने से समय खुश होता है कि इतने दिन के अंदर ये स्थिति और अवस्था बना के दिखाएंगे करके, समय को आगे रख करके करेंगे तो समय भी खुश होगा, लेकिन समय के आगे समय को इस तरीके से आगे रखेंगे तो समय को भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि इसीलिए हमें बाप ने जो संगम पर जो तैयारियां कराई है उसको हमें पूर्ण रूप से करके दिखाने का दृढ़ संकल्प रखना है, और समय को टीचर न बना करके बाप को सदा टीचर बनाना है। अच्छा, ओम शांति। पहले पांच वाले जो टारगेट फिक्स होने चाहिए, फिगर फिक्स होने चाहिए, दूसरे में समय से पहले अपनी तैयारी, टारगेट माने फिगर स्पष्ट होने चाहिए। अगर फिगर स्पष्ट नहीं है तो समझ लेना चाहिए कि हमने बाबा को टीचर नहीं बनाए। तो तीसरे में है कि पश्चाताप की मार्जिन, तो तीसरे में है कि पश्चाताप की जो मार्जिन बाबा हमें नहीं रखता है, लेकिन माया पश्चाताप की मार्जिन रखती है। तो चौथे में है कि बाबा साक्षी हो जाएगा तो हम भी साक्षी होने के टाइम में और पश्चाताप करते रहेंगे। पांचवा में जय जयकार और हाकार। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। मुरली से सेकंड टॉपिक है बाप का वायदा बनाम माया का चैलेंजेज। तो ये संगम युग के समय में आप हम सभी जानते हैं कि एक साथ दो शक्तियां काम कर रही हैं, एक भगवान और दूसरा माया, उनके बीच में हम ब्राह्मण आत्माएं हैं। तो ये संगम युग के अनमोल समय में एक तरफ अनेक प्रकार की प्राप्तियां हैं, अनेक प्रकार के अलौकिक अनुभूतियां हैं, ईश्वरीय संबंधों का अनुभव प्राप्त करने का समय है, साथ साथ दूसरी ओर माया द्वारा आने वाले अनेक प्रकार के समस्याएं हैं, परिस्थितियां हैं, विघ्न बाधाएं हैं, आकर्षण हैं। तो इस संगम युग के समय में हम इसका पूरा लाभ उठा सकें और हमारी जो मंजिल है, जो हमारा लक्ष्य है, उसके ओर हम तीव्र गति से आगे बढ़ सकें, उसके लिए बाबा ने हमें कई प्रकार की विधि बताई हुई है, कई प्रकार के डायरेक्शंस दिए हुए हैं, कई प्रकार के कंडीशंस दी हुई हैं, यदि हम उनको फॉलो करते हैं तो बाप का वायदा है कि वो आपको हमेशा सहयोग करेगा, मदद करेगा। यदि उनको फॉलो नहीं किया तो किसका वायदा है? तो माया का चैलेंज है कि उसमें मैं अपना कार्य करूंगी। तो पहले पॉइंट है जो मुरली से है, तो बाबा ने मुरली में कहा है कि बाप, जहां बाप की याद है वहां पर मैं साथ हूं, जहां बाप की याद है वहां मैं साथ हूं। क्योंकि भगवान जो है वो इन आंखों से देखने में तो नहीं आता है, लेकिन उसकी उपस्थिति, उसका प्रमाण क्या है कि भगवान की याद, भगवान की यदि याद है तो भगवान हमारे साथ 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 है, कायम है। लेकिन माया क्या कहती है, जहां कोई भी कमजोरी है, एक छोटी सी कमजोरी जगत है तो वहां पर मैं व्यापक हूं, जहां कोई भी छोटी सी कमजोरी भी यदि है तो वहां मैं व्यापक हूं। इसलिए बाबा ने क्या कहा कि आपके अंदर कोई भी कमजोरी ना हो, एक छोटी सी कमजोरी का अंश भी वंश पैदा कर देगी। तो पहले पॉइंट ये थे कि जहां बाप की याद है वहां बाप सदा साथ है। सेकंड पॉइंट है हिम्मत का कदम। बाबा ने वायदा किया हुआ है, जैसे कहावत भी है कि हिम्मत बच्चे मद दे बाप, हिम्मत मर्दा मद दे खुदा। तो बाबा ने कहा कि जहां हिम्मत है वहां मैं, वहां हमारी मदद है, वहां हमारा साथ है। तो इस ब्राह्मण जीवन में हम देखते हैं कि इस पुरुषार्थी जीवन में अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की बातें आती हैं, और हम उन बातों को सॉल्व करने के लिए अपने अपने स्तर पर पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन हमेशा हमारी शक्ति काम नहीं करती है। इसलिए बाबा की मदद का होना अति आवश्यक है, बिना भगवान की मदद के हम संभव सफल नहीं हो सकते हैं, सफल होना संभव नहीं है। तो बाबा ने कहा कि जहां हिम्मत है वहां पर हमारी मदद है। लेकिन माया के भी चैलेंज है कि अगर आपके अंदर कोई भी हिम्मत नहीं का संकल्प है, अर्थात यदि आपने संकल्प किया कि हम, जैसे कि हम नहीं कर सकते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है, हमने पहले कभी किया नहीं, हमको इसका अनुभव नहीं है, तो वहां पर माया अपना काम करेगी, अर्थात आपको वो हिम्मतहीन बना देगी और फिर आप उस कार्य में सफल नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि हिम्मत का एक कदम आप आगे बढ़ाओ तो आपको हजार कदम मदद के प्राप्त होंगे। ये माया का स्लोगन। तीसरी पॉइंट है बीज को स्मृति का पानी दो तो सर्व के सहयोग का फल प्राप्त होता रहेगा। बाबा ने वायदा किया है कि जो बाप बीज रूप है, उस बीज रूप बाप को स्नेह का पानी दो, उस बीज को स्नेह का पानी, अर्थात एक बाप के साथ अपना संपूर्ण स्नेह रखो, प्यार रखो। तो जो बाबा से हमारा प्यार का जो वायदा है कि एक बाप दूसरा ना कोई, अर्थात दिल का संबंध, दिल का कनेक्शन, दिल का लगाव झुकाव एक बाप के साथ हो, तो बाबा का वायदा है कि आपको हमेशा हम मदद करते रहेंगे। और यदि तो उससे क्या फायदा होगा कि जो अन्य आत्माएं हैं, जो इस वृक्ष के पत्ते हैं, उनसे भी सहयोग मिलता रहेगा। नहीं तो हम देखते हैं कि जो इस वृक्ष के पत्ते हैं वो वैरायटी पत्ते हैं, उनके मूड का कभी भी कोई ठिकाना नहीं। उनका मूड अच्छा है तो सहयोग देंगे, और मूड अच्छा नहीं है तो सहयोग नहीं देंगे। लेकिन बाबा का वायदा है कि यदि आप बीज को स्नेह का पानी देंगे, अर्थात एक बाप से आपका पूरा स्नेह प्यार होगा, तो जो पत्ते हैं वो भी आपको सहयोग देने के लिए बंधे हुए हैं, क्योंकि बाबा की उस समय मदद होती है। तो यहां माया भी अपना काम करती है। क्या काम करती है माया का, क्या चैलेंज है? यदि एक बीज के सिवाय किसी और से आपने दिल का लगाव रखा तो उस समय क्या करेगी माया, बाप से आपको दूर कर देगी, अर्थात फिर जो अन्य आत्माओं का सहयोग मिलना चाहिए वो आपको सहयोग नहीं मिलेगा। वो कभी सहयोग करेंगे, कभी सहयोग नहीं भी करेंगे। इसलिए जो बाबा ने कहा कि एक बीज को स्नेह का पानी दो तो सर पत्तों से सोते ही सहयोग का फल प्राप्त होता रहेगा। चौथी पॉइंट है, जो बंधन में बंधी हुई आत्माएं हैं उनका जो कंप्लेन है, शिकायत है कि बाबा हमें इनसे छुड़ाओ, तो उन आत्माओं के लिए बाप का वायदा है। तो वहां दो बातें लागू होती हैं। पहली बात है कि एक बाप के साथ सर्व संबंध अपने स्थापित करो। एक बाप ही आपका पूरा संसार है। यदि एक बाप ही आपका सब कुछ है तो बाप आपको मदद करेगा और आपके जो भी बंधन हैं, तो कहते हैं कि परिवार का बंधन है, समाज का बंधन है, मर्यादाओं का बंधन है, जो बहुत सारे बंधन हैं उन बंधनों से आपको मुक्ति मिलेगी। और दूसरी बात बाबा ने कही कि जो बेहद की सेवाएं हैं उन सेवाओं में अपने आप को ऑफर करो। यदि आप बेहद की सेवाओं में अपने आप को ऑफर करेंगे तो जो हद के बंधन है वो स्वतः ही कटते जाएंगे। लेकिन यहां माया का भी चैलेंज है कि एक बाप की सिवाय यदि आपने और किसी को किसी से भी अपना संबंध लगा रखा, बेशक वो लौकिक संबंधी हैं, लेकिन उनके प्रति यदि आपका लगाव है, झुकाव है, तो माया क्या करेगी, आपको इससे दूर ले जाएगी। अनेक प्रकार के जीवन में समस्याएं खड़ी होंगी। तो ये चौथी पॉइंट थी। फिफ्थ पॉइंट है, जहां बाप की श्रीमत है वहां बाप स्वयं हाजिर हैं। बाबा ने कई मुरलियों में कहा कि बाप की जो श्रीमत है उस श्रीमत को अपने हाथ में, या श्रीमत में श्रीमत को अपना हाथ दे करके चलते चलो। क्योंकि जीवन में कई ऐसी बातें आती हैं जो बातें हमारे लिए हानिकारक होती हैं, नुकसान वाली होती हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि यदि आप मेरी श्रीमत पर कदम दर कदम चल रहे हैं तो आपके जीवन में आने वाली हर समस्या को सॉल्व करने के लिए मैं बंधा हुआ हूं। हो सकता है कई बातें ऐसी होती हैं जिनमें नुकसान दिखाई देता है, तो बाबा ने कहा कि यदि आप श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं तो उस नुकसान को भी मैं बदल दूंगा, नुकसान को भी फायदे में चेंज कर दूंगा। तो यहां माया का भी चैलेंज है। माया क्या चैलेंज करती है कि श्रीमत की बजाय मनमत, परमत, जनमत, यदि उनको उन पर यदि माया उन पर यदि हम चल रहे हैं, किसी की भी मनमत पर हम कुछ करते हैं तो वहां पर सफलता नहीं मिलेगी, अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा होती रहेंगी। तो ये फिफ्थ पॉइंट थे। और सिक्स्थ पॉइंट है, ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं, नियम और मर्यादाएं, कोड ऑफ कंडक्ट। तो इस बाबा ने इस ब्राह्मण जीवन में जो हमें नियम मर्यादाएं दी हुई हैं, कोड ऑफ कंडक्ट दिए हुए हैं सुबह से लेकर के रात्रि तक या 24 घंटे के लिए, तो बाबा कहते हैं उन नियमों को पालन करते रहो। यदि आप उन नियमों पर चलते हैं तो मेरा वायदा है कि आपके जीवन में हमेशा आपको सफलता प्राप्त होती रहेगी। यदि उन नियमों को तोड़ते हैं तो वहां माया अपना काम करेगी। यदि हमने कोई भी एक नियम, छोटी सी गलती की, तो वहां माया एक गलती से अनेक गलतियां कराती रहेगी और आपको एक समस्याओं के, परिस्थितियों के भंवर जाल में ले जाएगी। इसलिए जो ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं हैं सुबह से लेकर रात्रि तक उनको फॉलो करना है तो बाप आपको मदद देने के लिए हाजिर है। अगली पॉइंट है, अकाल तख्त नशीन बनो तो बाप का दिल तख्त और भविष्य का राज तख्त तुम्हारे लिए है। बाप का वायदा है कि यदि आप अकाल तख्त नशीन होकर रहते हैं तो ऐसी आत्माओं के लिए बाप का दिल तख्त हाजिर है। और बाप का दिल तख्त इतना बड़ा है जो आप सब कुछ करते हुए उस तख्त पर विराजमान रह सकते हैं, चलते फिरते, खाते पीते, सारा काम काज करते हुए। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि अकाल तख्त नशीन बन करके रहो। और जो आत्माएं अकाल तख्त नशीन है वो भविष्य में भी डबल ताजधारी, डबल तख्त नशीन भविष्य में भी बनेंगे। लेकिन यहां माया का भी चैलेंज है कि माया देव भान में ला करके इस तख्त से उतार देती है। तो जहाँ अकाल तख्त से आत्मा निजी उतरती तो क्या होता है कि अनेक प्रकार की समस्याएं परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, और फिर बाद में जीवन में अनेक प्रकार की समस्या आने के कारण कभी खुशी तो कभी गम, वो सारी बातें चलती रहती हैं। तो ये कौन सी पॉइंट थी? सेवंथ। तो आठवीं पॉइंट है, श्रेष्ठ सम्मान की सीट पर रहो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। ब्राह्मण जीवन में परेशानियों का जो कारण है कि हम अपनी श्रेष्ठ सम्मान की सीट पर नहीं रहते हैं। बाबा ने हमें ब्राह्मण जीवन में जो अनेक प्रकार के सम्मान दिए हैं, और वो सम्मान जो है वो बहुत पावरफुल है। एक एक सम्मान में ईश्वरीय शक्ति समाई हुई है। तो बाबा कहते हैं उन श्रेष्ठ सम्मान की सीट पर रहो तो मेरा वायदा है कि आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं रहेगी, और साथ साथ सर्व का सम्मान भी प्राप्त होता रहेगा। लेकिन यहाँ माया का भी चैलेंज है कि यदि आप सम्मान में नहीं है, देह वाहन में आए, तो देह वाहन में आने से अनेक प्रकार के जो मान अपमान की फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, बातें हैं, वो आपके जीवन में आती रहेंगी। फिर आपका जीवन में कभी अप कभी डाउन, कभी खुशी कभी गम, वो सारी बातें चलती रहेंगी। तो इसलिए बाबा ने जो वायदा किया है कि श्रेष्ठ सम्मान की सीट पर रहो तो सर्व का सम्मान आपको प्राप्त होता रहेगा। अगले पॉइंट है, बाबा ने कहा कि एक बाप की याद में सदा खोए रहो तो आपके लिए सोचने का काम भी बाप करेगा। तो बाबा ने ये वादा किया हुआ है, इसका मतलब क्या है? एक बाप की याद में खोए रहो अर्थात एक बाप की याद में खोए रहो, एक बाप की याद में समाये रहो, वो जो कह रहा है वो करते रहो। तो आपके जीवन की जो सारी एक्टिविटी है, सोचने से लेकर के करने तक, सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक, सब में बाबा समाया हुआ हो, तो बाबा कहते हैं कि ऐसी आत्माओं के लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा, क्योंकि उनको क्या जरूरत है और क्या जरूरत नहीं है, क्या उनको चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसकी प्राप्तियां जो है वो मैं कराने के लिए तैयार हूं। और ऐसी आत्माओं के लिए माया की भी चैलेंज है। क्या चैलेंज होगी माया की? यदि याद में नहीं रहोगे तो आपके लिए अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ा, तो आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती रहूंगी। तो ये माया का वायदा है। और लास्ट पॉइंट है, बाबा ने वायदा किया है कि माया जीत जगत जीत। माया जीत अर्थात काम बेकार पर विजय प्राप्त करो तो जगत जीत, और भविष्य की जो विश्व की बादशाही है, स्वर्ग की बादशाही है, वो आपके लिए है। और यदि माया जीत नहीं बने तो वहां माया का चैलेंज है कि अनेक प्रकार की कामनाएं आपके जीवन में ला करके आपके जीवन में समस्याएं पैदा करती रहूंगी। तो ना वर्तमान समय जगत जीत बन सकेंगे, उसका अनुभव कर सकेंगे, और ना ही भविष्य का जो श्रेष्ठ पद है, श्रेष्ठ प्राप्ति है, श्रेष्ठ प्रारब्ध है, ना उसका अनुभव कर सकेंगे। तो ये बाप का वायदा और माया के चैलेंज, आज के मुरली से ये कुछ बातें निकाली थी। ओम शांति।
ओम शांति। टॉपिक है खालिस्तान बनाम देवी राजस्थान। 1984 की मुरली है जो कि आज चलने वाली है। तो उसमें माहौल जो था, बाबा ने उसका जिक्र किया है कि खालिस्तान और देवी राजस्थान, वास्तव में मकसद दोनों का एक ही है। जो खालिस्तान के संस्थापक थे भिंडरांवाला, उसमें उनका संकल्प था कि खालिस्तान स्थापन करना है। तो अपने अपने स्तर पर दोनों का मकसद एक ही है। देवी राजस्थान वाले भी शांति चाहते हैं, उनका भी मकसद शांति का था, लेकिन वो शांति स्थापन करने के जो घटक हैं वो थोड़ा और टाइप के हैं। वो है नेगेटिव और हमारी तरफ है पॉजिटिव। तो इसमें 10 पॉइंट है, हम पॉइंट नहीं बताएंगे, पॉइंट आप बताना कौन कौन से हैं। वो हम सारा इकट्ठा बताएंगे, बाद में बताएंगे पॉइंट कौन से हैं, इकट्ठा बताएंगे पहले। तो शांति स्थापन करने के लिए बाबा का जो महायोजना का है, ये खाक का जो ढांचा है, और उन संसार वालों का जो उनकी जो योजनाएं हैं उसमें क्या क्या उनकी सोच है, क्या क्या संकल्प हैं, तो वो जो राज्य स्थापन करते हैं उनका जो राज्य है वो है मनुष्य मत के ऊपर है, और यहाँ की मत है ईश्वरीय मत है। तो मनुष्य मत जो संकुचित विचारधारा वाली होती है, और बाबा की जो श्री मत है वो है बेहद की विचारधारा, और हद में बहुत प्रकार के तेरे मेरे के टकराव भी आते हैं। बेहद में मानसिकता विशाल बन जाती है, बेहद में अपनेपन की भावनाएं समाई हुई हैं, और हद में जो है वो जो स्थापना की जा रही थी वो है अज्ञानतावश, अज्ञानतावश। और यहां बाबा ने हम सबको सत्य ज्ञान दिया है, सत्य ज्ञान के बल पर इस दैवी राजस्थान की स्थापना हो रही है, और वहां स्वार्थ छिपा हुआ है कि मैं ही अधिपत्य करूंगा, मेरा नाम बाला होगा। कुछ दिन पहले एक मुरली चली थी स्वार्थ और सेवार्थ की, वो इसी से संदर्भित थी। तो उस बाबा ने कहा था स्वार्थ जहां है वहां क्या होता है, कामनाएं, हद की कामनाएं, और हंगामा होता है, वो झगड़ा होता है, हलचल होती है। तो उस मुरली में जगदीश भाई बड़े दादी विदेश जा रहे थे, उनसे मुलाकात थी कि स्वार्थ की बजाय सेवार्थ, तो बाबा ने सफलता का मंत्र दिया था कि स्वार्थ की बजाय सेवा अर्थ का, अगर सेवा अर्थ जा रहे हैं ये स्मृति में रहेगा तो सफलता का मंत्र कायम रहेगा, नहीं तो अगर स्वार्थ है तो हद की कामनाएं, हलचल और हंगामे, ये बात होगी। तो वहां है स्वार्थ छिपा हुआ है, और यहां बाबा ने हम सबको सेवा अर्थ का मंत्र, सफलता का मंत्र दिया हुआ है, और वहां है संसार में जो तोड़ने का काम किया, जो खालिस्तान बनाने की जो बात चली थी वो तोड़ने का काम है, संसार को तोड़ने का काम है, और बाबा ने हमको जोड़ने का काम, यहां बाबा हम सबको एकता के सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं, और वहां विश्व को टुकड़े टुकड़े बनाने का काम किया जा रहा है। तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो गया, और वहां सब अज्ञानतावश किया जा रहा है, यहां ज्ञान का स्पष्टीकरण है, रोशनी है, प्रकाश है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, जजमेंट पावर दी है। तो उस तरीके से वो अपने तरीके से अज्ञानतावश कर रहे हैं, और यहां पूरा ज्ञान का स्पष्टीकरण है। और वहां जो है राज्य जो स्थापन किया जाने वाला था, जो नहीं हो पाया और होगा भी नहीं, तो वो वास्तव में विकारी का विकारी राज्य रहेगा, लेकिन बाबा हम सबको निर्विकारी राज्य स्थापित करने के लिए बाबा ने हम सबको तैयार किया है। तो वहां विकारी राज्य है, यहां निर्विकारी राज्य है, और वो वाला राज्य भय के साय में स्थापित किया जा रहा था, मौत के साय में, हमेशा मौत का डर बन रहता था। उस समय माहौल जो तो बहुत खराब हो चुका था, हमने देखा था उस समय बसों की बसों उतार के लाइन में खड़ा करके पूरा भून दिया जाता था, ऐसा था उसमें माहौल बहुत खतरनाक था। हाँ जी, तो उसमें ये माहौल था, तो वहां जो है वहां भय के साय में, मौत के साय में जी रहे थे, असुरक्षा का माहौल था, और यहाँ हम परमात्म शतरछाया में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय ज्ञान के माध्यम से दैवी राजस्थान की स्थापना कर रहे हैं। तो वहां है मौत की छाया, और यहाँ परमात्म शतर छाया है, भय है वहां, और वहां हिंसा है, हिंसा, रक्त रंजित हिंसा है, और यहां भी, यहां कौन सी हिंसा है, यहां अहिंसा है, और यहां योग बल से है, वहां बाहुबल से है, वहां बाहुबल के हिसाब से हिंसा कितनी की जा रही है। और आपने देखा था एक बार हम गए थे गोल्डन टेंपल में, थोड़ा कैफे में डील दी गई थी, 1988 की बात है ये, तो उसमें हमने देखा था बहुत सारी चीजें देखी थी, तो वहां हिंसा है। और यहाँ बाबा हम सबको शुद्ध संकल्पों के हमारे अस्त्र शस्त्र हैं। चार दिन पहले मुरली थी ना, तुम बच्चों के पास क्या स्लोगन था, एक ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, परसों तो वो श्रृंगार है, तुम ब्राह्मण बच्चों का ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। तो वहां हिंसा के बल पर उस राज्य की स्थापना की जा रही थी, और यहां बाबा हम सबको अहिंसा परमो धर्म का मंत्र देते हैं, अहिंसा के बल पर शुद्ध संकल्पों से यहां बैठे बैठे कर रहे हैं, योग बल से कर रहे हैं और बाहुबल से कर रहे हैं। यहां लड़ाई जो है गुप्त चल रही है, वहां प्रत्यक्ष रूप से थी, तो वहां मौत के साए में है, भय के साए में है, हिंसा है, और यहाँ अहिंसा है। वहां स्वार्थ है, यहाँ सेवार्थ है। हाँ जी, हाँ, एक समाज के लिए बताया ना, एक ही राज्य की स्थापना। यहाँ तो बाबा बिशप को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और वहां सब विश्व कल्याण किया हूं, विश्व ग्राम बनाने के लिए, विश्व ग्राम। और वो वाला कौन था, छोटा गांव, शब ग्राम। तो वहां साधनों के बल पर, वहां अगर साधन नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे वो, और यहां साधना के बल पर हो रहा सारा। बैठे बैठे बाबा कहते तुम सारे विश्व को मुट्ठी में ले लेते हो, तुम्हारा आकाश, धरती, आकाश, सितारे, तो सब तुम्हारी मुट्ठी में होंगे। कल के मोहल्ले में जितनी जमीन चाहिए हुए ले लेना, कोई जमीन की कमी नहीं होगी। लेकिन वहां एक छोटे से टुकड़े के लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो खालिस्तान की और यहाँ देवी राजस्थान की कितना फर्क है उस बात में। और सबसे पहले जो बात थी, जो हम लास्ट में बता रहे हैं, इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए, हिम्मत। हिम्मत, उमंग, उत्साह, जो मुरली में बाबा ने जिक्र किया हुआ है, हिम्मत, उमंग, उत्साह। लेकिन उस उनकी हिम्मत भी बहुत थी। किसी राज्य की स्थापना करने के लिए संकल्प लेना बहुत हिम्मत चाहिए, लेकिन उनकी हिम्मत में नकारात्मक ऊर्जा भरी थी। और हम बच्चों को बाबा जो हिम्मत दिलाते हैं उसमें सकारात्मक ऊर्जा है, इसमें जो साहस है, इसमें जो निश्चय है, परमात्म साथ है, तो इसमें एक सकारात्मक ऊर्जा भरी है। तो ये जो हमारी हिम्मत और उनकी हिम्मत, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वहां भी धन चाहिए, और वहां जो सब कर रहे हैं वो पाप के वश किया जा रहा है, उस वहां गवाना ही गवाना है, और यहाँ कमाई ही कमाई है। जो बाबा ने जिक्र किया मूल्य में, यहाँ तुम्हारे हर कदम में पद्मों की कमाई समाई हुई है, और वहां तो गवाना ही गवाना है। तो ये 10 बातें थी, कौन कौन सी थी? हाँ जी, हाँ, वो सफल नहीं हुआ क्योंकि मनुष्य मत खत्म हो गया, वो खंड खंड हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, मनुष्य मत से इसलिए वो सब नहीं हो पाया। वहां अनेकता थी, यहाँ एकता है। बाबा ने बोला एकता के सूत्र में पुराया जाते हैं, वहां टुकड़े टुकड़े किया, यहाँ टुकड़ों को जोड़ने किया क्या काम जा रहा, वहां दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, यहाँ जो टुकड़े टुकड़े बाबा उनको जोड़ने का काम कर रहे। तो ये 10 बातें थी। पहली बात थी मनुष्य मत और ईश्वरीय मत, दूसरी बात थी तोड़ना और जोड़ना, दूसरी बात थी अज्ञानता, वहां अज्ञान के वश किया जा रहा है, अज्ञान का अंधकार छाया हो और यहाँ ज्ञान की रोशनी है, स्पष्ट है यहाँ। और तीसरी बात थी अनेकता, अनेकता और एकता, वो है जो तोड़ने का काम कर रहे हैं, यहाँ जोड़ने का काम कर रहे हैं। और चौथी बात थी वहां विकारों के वश किया जा रहा है, वहां पाप ही पाप है, यहाँ निर्विकारी राज्य की स्थापना की जा रही, बदले की भावना, ऑपरेशन ब्लू सर, हाँ, वो बहुत सारे फिर संवेदनशील मुद्दे हैं, सारा गड़बड़ जाएगा। तो विकारों के वश, और यहाँ निर्विकारी राज्य की स्थापना की जा रही है, वहां भय है, यहाँ निर्भय होकर किया जा रहा है सब, मौत के साए में है, यहाँ परमात्म शत्र साए में है, वहां स्वार्थ है, यहाँ सेवार्थ है, सेवार्थ है, वहां साधना है, यहाँ साधना है, वहां हिंसा है, यहाँ अहिंसा है, वहां बाहुबल योग बल, और वहां वो प्रत्यक्ष है, सब गुप्त हो रहा है, और हिम्मत वहां भी है, यहाँ भी है, लेकिन वहां नेगेटिव ऊर्जा है, यहाँ पॉजिटिव ऊर्जा है, वहां स्थूल धन है, यहाँ सूक्ष्म धन है, हाँ, अस्त्र शस्त्र हथियारों के बल पर हिंसा में जो है, तो वो सारा सारा बाहुबल हो गया। तो ये सारे 12 पॉइंट हो गए, कोई बात नहीं, वहां गवाया वो है ना पुण्य में, हाँ, यहाँ वो कमाई कमाई है, वहां गवाया गवाया, यहाँ गारंटी है बाबा की, पद्मों की कमाई है, और यहाँ यहाँ पद्मों की कमाई, वहां गवाया गवाया है, वो हद का बेहद का मनुष्य मत में आ गया वो। तो ये 10 चीजें थी, हाँ, यहाँ बाबा ने कहा ना वो हाहाकार करते और तुम्हारा जय जयकार का नारा है, वो है खालिस्तान का नारा लगाते, तुम जय जयकार का नारा लगाते देवी राजस्थान। ओम शांति।